दलित साहित्य की अवधारणा व आरंभ। जिन अर्थों में आज दलित साहित्य की पारिभाषिक रूप में चर्चा होती है, उन अर्थों में दलित साहित्य एक आंदोलन के रूप में 1960 के आसपास मराठी भाषा में आरंभ हुआ और 1970 तक मराठी भाषा के साहित्य में उसने केंद्रीय महत्व प्राप्त कर लिया था। यह केंद्रीय महत्व आज भी मराठी में दलित साहित्य को प्राप्त है। मराठी के दलित साहित्यिक आंदोलन ने अन्य भारतीय भाषाओं को प्रभावित तो किया, लेकिन लगभग 2 दशकों के बाद। अन्य भारतीय भाषाओं में जैसे कन्नड़, गुजराती, हिंदी आदि में दलित साहित्य की गूंज 1980 के बाद ही सुनाई देनी शुरू हुई थी। अब अन्य भाषाओं पंजाबी, तेलुगु, तमिल आदि में भी फैल चुकी है। मराठी में दलित साहित्य पारिभाषिक रूप में आधुनिक काल में ही प्रचलित हुआ और इस साहित्यिक आंदोलन की वैचारिक प्रेरणा डॉ. भीमराव अम्बेडकर व महात्मा ज्योतिबा फूले आदि के विचारों व उनके द्वारा चलाए गए सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों से मिली। लेकिन परंपरा रूप में मराठी दलित साहित्य ने स्वयं को मराठी भक्त कवियों, विशेष रूप से चोखामेला, जो 14वीं सदी के प्रमुख मराठी संत कवि हुए हैं, से जोड़ा। साथ ही भक्त नामदेव, एकनाथ, समर्थ रामदास आदि की परंपरा को मराठी दलित साहित्य ने अपनाया। उत्तरी भारत में भी संत परंपरा या भक्ति आंदोलन का स्वरूप ऐसा रहा कि उसमें दलित भावनाओं को धार्मिक स्वरूप में अभिव्यक्ति मिली। सिद्धनाथ परंपरा से लेकर 14वीं-16वीं सदी के बीच के भक्ति काल में अनेक ऐसे संत व भक्त कवि हुए जिन्होंने अपने जीवन की दलित पृष्ठभूमि व अनुभवों को धार्मिक रूप में अपनी वाणी में प्रस्तुत किया। इन संत कवियों में सर्वाधिक शक्तिशाली स्वर रहे संत कबीर और गुरुदेव दास के। इनके अतिरिक्त भी सेन, नामदेव, साधना, त्रिलोचन, रज्जब, गरीबदास ऐसे अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने दलित जीवन और भावनाओं की बड़ी सशक्त अभिव्यक्ति अपनी वाणी में की। इनमें से अनेक भक्त कवियों को सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित मध्यकाल के अत्यधिक महत्वपूर्ण धार्मिक और साहित्यिक संकलन आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब में स्थान दिया गया। आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं की वाणी के अतिरिक्त मध्यकाल के उन अनेक भक्त कवियों की वाणी को संकलित किया गया जो धार्मिक पाखंडों व कुरीतियों के विरुद्ध थे तथा व्यापक रूप में मानव केंद्रित धार्मिक आस्था या निर्गुणवादी धार्मिक विचारों के से प्रेरित थे। संत कबीर की वाणी को सिख गुरुओं के बाद सर्वाधिक सम्माननीय स्थान आदि ग्रंथ में दिया गया और कबीर के बाद गुरु रविदास की वाणी को। सिख गुरुओं ने भी अपनी वाणी में जाति पाति जैसी कुरीतियों का खंडन किया है। मानस की जात सभय एको पहचानबो आदि धारणाओं को सशक्त अभिव्यक्ति दी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म को संगठित रूप दिया व व्यवहारिक रूप में भी जाति व्यवस्था पर चोट की। 1699 की वैसाखी पर खालसा पंथ के सृजन के समय उन्होंने प्रथम 5 प्यारों का चुनाव निम्न जाति समझे जाने वाली जातियों के व्यक्तियों को लेकर किया था। लेकिन खालसा पंथ के जातिविहीन संगठन के सृजन के 300 वर्षों में ही सिखों में भी जाति आधारित गुरुद्वारों का निर्माण कई दशकों पहले से ही शुरू हो चुका था। उत्तर भारतीय संत मत या भक्ति आंदोलन का यह संक्षिप्त परिचय यहाँ इस दृष्टि से दिया गया कि भारतीय समाज वेदों के समय से ही जातिगत आधार पर विभाजित रहा है। वेदों के समय में इसे वर्ण व्यवस्था कहा गया, जो जन्म आधारित भी थी व कर्म अर्थात पेशा आधारित भी। लेकिन वर्ण व्यवस्था पतित व विकृत होकर पूरी तरह जाति विभाजन व अस्पृश्यता के रूप में बदल गई, जिसमें भारतीय समाज के एक बहुत बड़े हिस्से शूद्रों को अस्पृश्य बना दिया गया। चांडाल, भंगी, चमार, जुलाहे, धोबी, कुम्हार आदि जातियों को निम्न व अस्पृश्य जातियाँ बना दिया गया व उन्हें गाँव या शहर में शिष्टजनों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य मोहल्लों से दूर अलग थलग व जीने की बड़ी कठोर परिस्थितियों में रहने के लिए विवश किया गया था। हिंदू धर्म के अनेक धर्मग्रंथों व स्मृतियों की रचना इस अमानवीय जाति व्यवस्था को उचित ठहराने के लिए की गई। लेकिन हर 100-200 बरस पर ऐसी अमानवीय परिस्थितियों के खिलाफ किसी न किसी रूप में आवाज़ उठती रही। इस अमानवीय व्यवस्था के कारण भारतीय समाज में धर्म परिवर्तन भी होता रहा। अस्पृश्यता के दंश से पीड़ित होकर शूद्र अन्य धर्मों इस्लाम, बौद्ध आदि के अनुयायी बनते रहे। यहाँ तक कि आधुनिक काल में डॉक्टर अम्बेडकर जैसे अत्यंत प्रखर बुद्धिजीवी व प्रकांड विद्वान को भी जीवन के अंतिम महीनों में धर्म परिवर्तन का निर्णय लेना पड़ा। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन भी एक स्तर पर पूरे भारत में सामाजिक उत्पीड़न के अनेक रूपों के प्रति उठाए विद्रोह ही था, जो अपने स्वरूप में आध्यात्मिक था। मध्यकाल के इन भक्त कवियों व संतों ने अपनी वाणी में जहाँ एक ओर हिंदुओं के धार्मिक कट्टरता, कठोरता, कुरीतियों व पाखंडतापूर्ण व्यवहार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, वहीं गुरु नानक ने बाबर के अत्याचारों के खिलाफ हिंदुस्तान की आवाज़ को वाणी दी। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, ऐती मार पे कुरलाणे तैंकी दर्द न आया। कबीर वाणी की विद्रोही स्वर से तो कई साहित्यिक सौंदर्य शास्त्री भी विदकते हैं, इसलिए इन साहित्यिक सौंदर्य शास्त्रियों को रविदास वाणी कबीर की अपेक्षा मधुर व निरीह लगती है, जबकि वास्तविकता यह है कि अपनी आंतरिक विषय वस्तु में कबीर और रविदास की वाणी में कोई तात्विक अंतर नहीं है। एक ही तरह की स्थिति को दोनों अपने अपने ढंग से कहते हैं, जबकि दोनों का अंदाजे बयां अलग है। 1980 के बाद हिंदी साहित्य में जब दलित स्वर उभरे तो इन स्वरों ने आधुनिक मराठी दलित साहित्य से तो निश्चित रूप से प्रेरणा व उत्साह ग्रहण किया, लेकिन हिंदी दलित साहित्य या उत्तर भारत की दलित साहित्य की मध्यकालीन परंपरा भी मौजूद थी, इसीलिए इन वर्षों में रविदास वाणी की ओर अधिक ध्यान दिया गया। कबीर की चर्चा तो पहले से ही थी। कबीर और रविदास समकालीन थे, दोनों बनारस के नज़दीक पैदा हुए, उनके बीच संवाद हुआ भी बताया जाता है, जो सेन भक्त द्वारा प्रस्तुत किया माना जाता है। उस संवाद का निष्कर्ष यह है कि सगुण मार्गी रविदास ने इस गोष्ठी के बाद कबीर द्वारा प्रतिपादित निर्गुण मत को अपना लिया था। इस गोष्ठी की प्रामाणिकता अभी निर्विवाद रूप से सिद्ध नहीं है, लेकिन कबीर और रविदास वाणी में तात्विक रूप से इतनी साम्यता है कि वे एक ही धारा के अंग जान पड़ते हैं। कबीर और रविदास दोनों ने ही अपने निम्न जाति के तत्व को शर्म से नहीं गर्व से घोषित किया है और उच्च जातिगत अभिमान को मिथ्या सिद्ध किया है। मध्यकाल में भारतीय समाज के जातिगत विभाजन का विरोध इसी रूप में सबसे सशक्त हो सका था, जिस रूप में कबीर और रविदास ने किया। आधुनिक दलित साहित्य ने भी अपनी पहचान समाज के विकृत जातिगत ढांचे के प्रति अपना आक्रोश जताकर की है। सो इस संदर्भ में आधुनिक दलित साहित्य के जड़ें कबीर और रविदास की वाणी में देखी जा सकती है। इसलिए इस तथ्य को यहाँ रेखांकित किया जा सकता है कि सही मायनों में कबीर और रविदास हिंदी दलित साहित्य के, या कहना चाहिए कि उत्तरी भारत के दलित साहित्य के अग्रदूत हैं। उत्तरी भारत के दलित साहित्य का आरंभ कबीर और रविदास से माना जाना चाहिए और वहीं से दलित साहित्य का ऐतिहासिक अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार हिंदी दलित साहित्य का आरंभ मध्यकाल के भक्ति आंदोलन से मानते हुए अब देखना यह है कि दलित साहित्य की अवधारणा को पारिभाषिक रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाए। दलित साहित्य की अवधारणा। दलित साहित्य की अवधारणा वास्तव में दलित की अवधारणा से जुड़ी है। दलित किसे कहते हैं? रविंद्र कुमार कुसुम कुमार ने अपने हिंदी थिसारस में दलित के कई संदर्भगत अर्थ दिए हैं। एक अर्थ है शोषित, एक अर्थ है पराजित जिसमें दमित, विजित आदि अनेक भावार्थ सम्मिलित हैं। एक अर्थ पद दलित है जिसमें दलित, पदाक्रांत आदि अर्थ सम्मिलित हैं। ज्ञान शब्दकोश में दलित का अर्थ रौंदा, कुचला, दबाया हुआ, पदाक्रांत के साथ हिंदुओं में वे शूद्र जिन्हें अन्य जातियों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है भी दिया है। माता प्रसाद ने अपनी पुस्तक हिंदी काव्य में दलित काव्यधारा में दलित शब्द के अनेक प्रयोगात्मक अर्थों की चर्चा की है, जिनमें चांडाल, अस्पृश्य, अछूत आदि शामिल हैं। उपेक्षित, अपमानित, उत्पीड़ित, प्रताड़ित भी इसी कोटि में आने वाले शब्द हैं। शब्द के व्यापक सामाजिक अर्थों में गुलाम, भूमिहीन, बंधुआ भी शामिल हैं। डॉक्टर चंद्रकांत बानदेव डेकर के अनुसार जिन जातियों को महात्मा गांधी ने हरिजन कहा था वही जातियां दलित नाम से पहचानी गई। श्री माता प्रसाद गुप्त के अनुसार दलित वर्ग के अंतर्गत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और विमुक्त जातियां सभी आ गईं। भारत में आर्य अनार्यों में भयानक संघर्ष के बाद आर्य जीते तो उन्होंने विजित जातियों, अनार्य, दास, असुर, दस्यु व आदिवासियों को शूद्र बना डाला। सो भारतीय समाज में दलित थे नहीं, वे एक ऐतिहासिक सामाजिक प्रक्रिया में भारत के मूल निवासियों से ही और प्राकृतिक रूप से क्रूर सत्ता व दमन का प्रयोग कर दलित बनाए गए हैं। अजीब बात है कि विश्व के अन्य देशों में दास प्रथा सैकड़ों वर्ष पूर्व समाप्त हो गई, लेकिन हमारे देश में हजारों वर्षों से जबरदस्ती थोपी जाति व्यवस्था व एक बहुत बड़े मानव समूह का जातिगत आधार पर पीड़न व दमन आज तक जारी है। शूद्र शब्द उन दलितों के लिए रूढ़ किया गया जिनके अपमान और प्रताड़ना का अधिकार समाज के शक्तिशाली वर्ग ने ग्रहण किया। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर शूद्र जाति को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं, लेकिन वेद, उपनिषदों और शंकराचार्य ने शूद्र को जन्म से जोड़कर व अच्छे बुरे कर्मों के फल से जोड़कर शूद्र के नाम पर मनुष्यों की प्रताड़ना को एक दैवीय आधार प्रदान करने का प्रयास किया। यही तर्कहीन विचार आज तक हिंदू समाज के बड़े हिस्से में बद्धमूल है। मनुस्मृति आदि ग्रंथों में शूद्रों के लिए सामान्य मानवीय जीवन की इच्छा प्रकट करने पर भयंकर दंड विधान की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने शूद्रों में भी अतिशूद्र बताए हैं जिनके साथ अकथनीय अमानवीय व्यवहार किया जाता है। जाति व्यवस्था या अस्पृश्यता के अमानवीय विचारों का विरोध करीब 4000 वर्ष पूर्व लौकिकवादी दार्शनिक चार्वाक ने किया। 2500 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध ने इस भेदभाव का सशक्त विरोध किया जिससे बहुत से शुद्र बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। मध्यकाल में उत्तर भारत की भक्ति आंदोलन के संतों व भक्त कवियों ने भी इस व्यवस्था का विरोध कर सिद्ध किया कि जाति व्यवस्था दैवी विधान नहीं केवल मानव के शोषण के लिए बनाया गया सामाजिक विधान मात्र है। भारत में दलित रूपी सामाजिक समूहों के निर्माण व इन समूहों में जातिगत आधार पर उत्पीड़ित लोगों के शामिल होने व सदियों से इनका शोषण व उत्पीड़न के प्रतिरोध की जानकारी के बाद दलित साहित्य की अवधारणा को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है। दलित साहित्य वह साहित्य है जो दलितों के जीवन, उनके दुख सुख, उनकी सामाजिक राजनीतिक स्थितियों, उनकी संस्कृति, उनकी आस्थाओं व नास्थाओं, उनके शोषण व उत्पीड़न तथा इस उत्पीड़न शोषण के दलितों द्वारा प्रतिरोध की परिस्थितियों को व्यापक तथा गहराई के साथ कलात्मकता से प्रस्तुत करता है। दलित साहित्य की यह परिभाषा शायद कई विचारकों को अग्राह्य लगे, लेकिन भारतीय दलित साहित्य पर विहंगम दृष्टि डालने से इस परिभाषा की सार्थकता नजर आएगी। हिंदी साहित्य के आरंभ से ही काव्य में दलित जीवन का चित्रण किसी न किसी रूप में हुआ है। यूं तो भारतीय साहित्य का आरंभ भी संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि के रूप में दलितों द्वारा ही माना जाता है, किंतु न तो वाल्मीकि रामायण में ही और न अन्य संस्कृत साहित्य में दलितों के प्रति कोई विशेष सहानुभूति नजर आती है। हाँ, पाली साहित्य में जो अधिकांशतः बौद्ध प्रभाव में रचा गया है, दलितों के प्रति करुणा है। हिंदी साहित्य का आरंभ 1000 ईस्वी के आसपास या उससे भी कुछ पहले माना जाता है। हिंदी साहित्य के आरंभिक कवियों में सरापा जैसे सिद्धनाथ योगी थे। इन सिद्धनाथों की संख्या 76 से लेकर 106 तक मानी जाती है। इनमें सरापा, जालंधरनाथ, आदिनाथ, गोरखनाथ आदि अनेक प्रसिद्ध सिद्धनाथ हुए हैं। सिद्धनाथों पर भी बौद्ध धर्म का प्रभाव था व अनेक सिद्धनाथ कवियों का संबंध दलित वर्ग से था। इनमें गोरखनाथ सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनकी वाणी संपादित की है। गोरखनाथ सही मायनों में कबीर सामाजिक वाणी के अग्रज हैं, क्योंकि धार्मिक सामाजिक पाखंडों में भेदभाव के प्रति गोरखनाथ भी कबीर जैसे कठोर भाषा ही प्रयुक्त करते हैं। इसी समय महाराष्ट्र में नाथ पंथ और वारकरी संप्रदाय क्रांतिकारी वाणी का सृजन कर रहा था। संत नामदेव हिंदी, पंजाबी और मराठी के बीच की कड़ी है, जो पंजाब में भी रहे और उनकी रचना हिंदी में भी मिलती है तथा आदि ग्रंथ में संकलित है। हिंदी साहित्य के इन आरंभिक नाथ सिद्धों की रचना के पश्चात पूरा भक्तिकाल ही जाति पाति व कुरीति विरोधी काल है। भक्तिकाल के इन महान संत कवियों कबीर, रविदास, दादूदयाल, पलटूदास, मलूकदास, मीराबाई, सहजोबाई, दयाबाई, सुंदरदास, रज्जब इत्यादि ने अपनी वाणियों से निम्न कही जाने वाले जातियों में स्वाभिमान की भावना भरी। इन संत भक्त कवियों में कबीर और रविदास सही मायनों में उत्तर भारत के दलित साहित्य के अग्रदूत बनकर उभरे, क्योंकि उन्होंने जातिगत उच्चता की भावना को अपनी वाणी से ध्वस्त कर सच्ची मानव समता व कर्म आधारित उच्चता निजता की अवधारणाएं विकसित की। हिंदी साहित्य का रीतिकाल हर दृष्टि से अनुर्वर व पतन का काल है। बीच बीच में कुछ कवियों को छोड़कर अधिकांशतः यह काल अत्याचारी सामंतों के चाटुकार कवियों का काल है। इसमें सारा बल श्रृंगारिकता के चित्रण पर है। आधुनिक काल के आरंभ में ही हिंदी साहित्य फिर सामाजिक यथार्थ की ओर लौटता है। वह भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि कवि नाटककार हिंदी साहित्य को भारतीय जन की पीड़ा का उद्घोषक बना देते हैं। भारतेंदु के बाद नाथुराम शर्मा शंकर, रूप नारायण पांडे, रामचंद्र शुक्ल, अछूत किया, सुमद्रा कुमारी चौहान, मिथिलेश गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, भगवती चरण वर्मा आदि अनेक कवि लेखकों ने छुआछूत और दलितों पर अत्याचार के विरोध में रचनाएं की। छायावादी दौर में निराला दलितों की कथा को उभारने वाले प्रमुख साहित्यकार बनकर उभरे। निराला की दलित जन पर करु करुणा आदि कविताएं, चतुर चमार आदि अनेक कहानियां व उपन्यास दलित जीवन पर केंद्रित हैं। प्रगतिवाद का पूरा दौर दलित जीवन के संघर्षों को वाणी देने वाला है। प्रेमचंद, यशपाल, अमृतलाल नागर, नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, परश्वनाथ रेणु, रांगे राघव आदि तमाम लेखकों ने दलित जीवन को केंद्र में रखकर अनेक रचनाएं की। 1947 के बाद के हिंदी साहित्य व विशेषतः 1970 के बाद के हिंदी साहित्य में दलित स्वर और भी प्रबल रूप में उभरे हैं। 1990 के बाद तो दलित ही दलित लेखन कर सकता है, ऐसे नारे भी उभरे हैं। इसी बीच जगदीश चंद्र, चतुर्सेन शास्त्री आदि के उपन्यास, ओम प्रकाश बाल्मीकि की, मोहनदास नैमिष राय आदि की आत्मकथाएँ, माता प्रसाद आदि के शोध ग्रंथों ने हिंदी में दलित साहित्य को एक धारा के रूप में स्थापित कर दिया है। अब कोई उसे पसंद करे या नापसंद, इससे सहमत हो या असहमत, हिंदी में दलित साहित्य एक प्रवृत्ति के रूप में वास्तविक बन चुका है।